आप लोग हमेशा कहते रहते हो इतना नेगेटिव मत बनो, हैं, सबकी राय आने दो, सारी इंफॉर्मेशन बाहर आने दो, उसके बाद अपना एपिसोड बनाओ। तो भाई पिछले हफ्ते कोरोना से रिकवर करते करते मैंने सारी ओपिनियन सुनी, सारे डिटेल्स देखे कि भाई ये अग्निवीर चीज क्या है, ये अग्निपथ स्कीम क्या चीज है, और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुनी, बाबूज की बात सुनी, स्पोक्स पर्सन की बात सुनी, गोदी मीडिया की बात सुनी, कंगना तक की बात सुनी, और फिर भी मैंने कहा नहीं चुप रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मामला है। जहां तक आर्मी की बात है, स्ट्रीट्स पर वायलेंस भी हुआ है, बहुत ही दुखद बात है कि हमारे यूथ को ऐसे इस तरीके से स्ट्रीट्स में उन्होंने वायलेंस किया। एक और बेटर तरीका हो सकता था अपना प्रतिशोध दिखाने के लिए, बट एनीवेज वायलेंस हुआ, सरकार ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, कुछ कुछ कंसेशंस भी दिए इस पूरे स्कीम में, दिस अग्निपथ स्कीम। अब सरकार कहती है कि देखो भाई ये स्कीम तो हम लागू कर रहे हैं, डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं, रिक्रूटमेंट भी बाहर आना शुरू हो चुका है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक जब होता है तो दो किस्म के मास्टर स्ट्रोक होते हैं। एक मास्टर स्ट्रोक होता है डिमोनेटाइजेशन का, बैड आइडिया बैड एग्जीक्यूशन, और दूसरा मास्टर स्ट्रोक होता है जीएसटी जैसा। आइडिया अच्छा है, जरूरत भी है उसकी, लेकिन एग्जीक्यूशन में आपने एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। अग्निवीर जो पॉइंट है, ये जो अग्निपथ स्कीम है जिससे अग्निवीर बनेंगे, ये डिमोनेटाइजेशन वाला मास्टर स्ट्रोक है, जीएसटी वाला मास्टर स्ट्रोक है, ये ठीक हो सकता है या नहीं, या बाद में जाकर इसके वजह से जैसे हमारी इकोनॉमी को डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से धक्का मिला है, वैसे ही हमारे फोर्सेस को धक्का मिलेगा। 8 सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। 8 सवाल ऐसे हैं जिसको अगर आप आंसर नहीं करोगे तो अभी नहीं तो 3-4 सालों में आपको प्रॉब्लम दिखने लगेगा, जैसा कि बहुत बार मास्टर स्ट्रोक के साथ होता है, 3-4 साल में हवा निकल ही जाती है। अब शुरुआत करने से पहले मैं ये आपको क्लियर बता देता हूं कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रॉब्लम है, कोई नहीं कह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है। डिफेंस पेंशन और वेज बिल की अगर आप बात करें, 50% आपका डिफेंस बजट तो बस पेंशन और वेज में ही निकल जाता है। अरे भाई मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे कहां रह गए आपके पास? इकोनॉमी नीचे जा रही है, बजट हमारी श्रिंक करती जा रही है, जो रियलिस्टिक बजट है डिफेंस की वो श्रिंक करते जा रही है। वो तो गालवान के बाद सरकार को लगा नहीं यार आर्मी को भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पॉइंट इज इशू है, सॉल्व कैसे करोगे? अग्निपथ क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे या प्रॉब्लम को और आगे बढ़ा दोगे, जैसा कि नोटबंदी ने प्रॉब्लम और बढ़ा दिया था? याद रखिए हमारी सरकार का एक ही जेन्युइन मास्टर स्ट्रोक है और वो है सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, जिसको एग्जीक्यूट और प्लान अच्छी तरीके से आर्मी ने किया था। उसी आर्मी पर आज एक और मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, और इसमें भी कोई दो राहें नहीं है कि ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि यह कितना इल थॉट था। री इंप्लॉयमेंट फॉर एक्स अग्निवीर अभी 10% आ गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ में, 10% कोस्ट गार्ड में आ गया है, 2 रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट, जब इतना सारा रस्ते पर प्रोटेस्ट हुए तो ये सारी छोटी छोटी चीजें सामने आने लगी, लेकिन क्लियरली ये दिख रहा है कि चीजें सोची नहीं गई थी। लेकिन ये 8 जो चीजें हैं, अगर इनके ऊपर अच्छी तरीके से सोचा जाए तो ये एक अच्छा प्लान बन सकता है, लेकिन लग रहा है कि अब सरकार ने मन बना लिया है कि भाई जितना हमने देना था कंसेशन दे दिया, अब तो हमारी ही चलेगी। ये जो प्रोटेस्ट आपने सड़कों पर देखा, ये प्रोटेस्ट क्यों देखा? हम ये नहीं समझते हैं कि देर इज अ सोशल एंगल टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो बाबूज हैं जिन्होंने ये प्लान डिजाइन किया है, उनके बच्चे तो नहीं जाते हैं आर्मी, और ना ही कोई ब्यूरोक्रेट के, ना ही कोई पॉलिटिशियन के बच्चे जाते हैं हार्टलैंड इंडिया के, किसानों के बच्चे जा रहे हैं आर्मी में, ब्यूरोक्रेट्स के नहीं। और बोलने के लिए अच्छा है पेट्रियटिज्म, लेकिन एक जो कोर रीजन होता है जिसके वजह से ये बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, रस्तों पर भागते हैं, अगर आप हाईवे पे कभी गए हो तो आप देखोगे लंबे लंबे डिस्टेंसेस ये भागते हैं, क्योंकि ये उस क्लास स्ट्राटा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो फंसे हुए हैं। आर्मी का जॉब एक गवर्नमेंट जॉब से भी ऊपर होता है, गवर्नमेंट जॉब तो आपको स्टेबिलिटी दे देती है, आपकी शादी भी करवा देगी, लेकिन आर्मी की जॉब आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ, शादी के साथ साथ आपको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देती है। भाई साहब यूनिफॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, कभी गांव में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अपवर्ड सोशल मोबिलिटी क्या चीज होती है। अब सरकार कह रही है कि हम आपको ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी देंगे, आप परिश्रम करिए, आपको हम यूनिफॉर्म देंगे, लेकिन वो यूनिफॉर्म हम आपसे 4 साल बाद छीन भी सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिशन ज्यादा हुआ तो, अगर आप मेहनत भी करें तब भी ये यूनिफॉर्म आपसे छीन सकती है। सोचिए कितना बड़ा रेसिपी फॉर डिजास्टर है। आईएएस के साथ करके देख लीजिए, डेप्यूटेशन लगा दीजिए 4 साल के लिए और उसके बाद बोलिए नहीं आप आईएएस नहीं रहेंगे। तो जो फॉल फ्रॉम ग्रेस होगा जो आपकी इज्जत का मिट्टी पलीत होगा। हम कहते हैं कि दूसरे देशों में ऐसा होता है, दूसरे देशों में ऐसा सोशल स्ट्राटा नहीं होता है, दूसरे देशों में ऐसी सोसाइटी नहीं होती है, तो उसे दूसरे देशों में खैर बहुत कुछ और भी होता है, लेट्स नॉट गेट देयर। प्रॉब्लम नंबर टू जिसके बारे में सरकार को अब समझ में आया है प्रोटेस्ट के बाद, कि आपने नौकरी तो छीन ली 75% लोगों की, इज्जत गई वो तो कभी आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं इज्जत की इशू नहीं है, तो पेट का तो इशू है, तो कहां जाएंगे ये 75% ट्रेंड पेट्रियोटिक मैकेनिकल इंजीनियर, माने हर चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट आते हैं, तो ये हाईली ट्रेंड लोग जाएंगे कहां? और इसके लिए सरकार ने कहा चलो हम इनको CAPF में ले लेंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ले लेंगे, जबकि सालों से होम मिनिस्ट्री ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जो टर्म्स एंड टाइप ऑफ सर्विस होता है CAPF में वो बिल्कुल अलग है इंडियन आर्मी से, तो ये दोनों ना ऑपरेशनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक साथ काम नहीं कर पाते क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब फौजी कल्चर को आप CAPF इथॉस के अंदर थोपना चाहते हो जो कि एकदम अलग ट्रेनिंग से अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो यह भी एक अनवर्कबल सॉल्यूशन है, लेकिन हाँ अभी इसको थोपा जा रहा है क्योंकि सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं इतने सारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हैं कि अगर इनकी नौकरी चली भी जाती है अगर ये फुल टाइम सोल्जर नहीं बनते हैं। दूसरा जो बड़ा होक्स चल रहा है, चलिए CAPF में आपको एंट्री नहीं मिलती है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री मिल जाती है। आनंद महिंद्रा ने आकर कोट किया, एडिटर दिखाइए कोट जरा, लार्ज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अग्निवीर्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर विथ लीडरशिप टीमवर्क एंड फिजिकल ट्रेनिंग, अग्निवीर्स प्रोवाइड मार्केट रेडी प्रोफेशनल सॉल्यूशंस टू इंडस्ट्री कवरिंग फुल स्पेक्ट्रम फ्रॉम ऑपरेशंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई साहब पांच बार लगा मुझे ये ट्वीट पढ़ने में समझने के लिए कि महिंद्रा साहब बोलना क्या चाहते हैं, कि ये जो चार सालों में विथ 6 months ऑफ ट्रेनिंग उसमें पेट्रियटिज्म ट्रेनिंग मैन पावर ये सब तो ठीक है, लेकिन दूसरे साइड ये पूरे MBA ग्रेजुएट्स भी बन के आएंगे क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस टू इंडस्ट्री दे देंगे, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अरे IIT ये BTech MTech इंजीनियर MBA की क्या जरूरत है, अब बस अग्निवीर्स की जरूरत है तभी तो 5 trillion ton इकोनॉमी हम बनेंगे। जब आनंद महिंद्रा जी से पूछा गया कि अच्छा इतनी अच्छी बात है तो आपका कंपनी तो इतना पुराना है तो बताइए कितने एक सर्विसमैन हैं, कितने SSC ऑफिसर्स आपके पास हैं फॉर हायर, तो अभी हम उसका जवाब वेट कर रहे हैं, अभी तक उसका जवाब आया नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये अगर आप ट्वीट्स बड़े बड़े हांकने वाले ट्वीट्स हटा दें तो जो हमारे ब्रेव हैं जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और मैं कह रहा हूं 30-35 साल वाले ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, ये फैक्ट है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी ने एक छोटा सा स्टडी किया था, 80-90 गुरदासपुर के एक सर्विसमैन ने नौकरी पाई, सैनिक बोर्ड जहां उन्होंने अप्लाई किया था, 80-90 गुरदासपुर के एक सर्विसमैन ने नौकरी पाई, कितने अप्लाई किया था, 1500-1600 लोगों ने अप्लाई किया था, यह हालत है ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक सर्विसमैन। यहां हम मान के बैठे हैं कि भैया नौकरियां तो इतनी ज्यादा हैं कोई लेने वाला नहीं है हमारे देश में, जबकि 40 साल में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सडनली अग्निवीर्स के लिए ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट हमारे पास रखा हुआ है, यह एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। और नॉट टू कंसिडर कि अगर ये हाईली ट्रेंड लोगों को आप नौकरी नहीं दोगे तो फिर वो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड ट्रेंड जवान्स, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि नहीं है, चार साल बाद समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, आर्मी को क्या मिला, इस सबसे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ, आर्मी को क्या मिला, आर्मी ने उनको ट्रेन किया 17 साल की उम्र में, उनको उठाया 17 साल की उम्र में, क्या स्किल्स होंगे किसी के पास, कुछ नहीं होंगे, बेसिक ट्रेनिंग स्किल्स लगाने पड़ेंगे, सबसे पहले 6 महीने उसी में चले गए, उसके बाद उसको किसी टेक्निकल ट्रेड में आपको डालना पड़ेगा, तो बेसिक्स कि भैया परेड कैसे होता है, एक्सरसाइज कैसे होता है, एंड बेसिक यूज ऑफ वेपन्स कैसे होता है, चलिए 6 महीने उसमें निकल गए, उसके बाद अच्छा आप किस फील्ड में जाएंगे, फिर आप सिखाएंगे इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक, फिर ट्रेनिंग देंगे आप मिलिट्री हार्डवेयर में, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वेपन्स स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, इन्फेंट्री मैन के लिए भी टैक्टिकल स्किल्स चाहिए होंगे, अच्छा एक्सप्लोजिव्स है, अच्छा टीम वर्क कैसे होता है, प्रोसीजरल ड्रिल्स कैसे होती हैं, कितना टाइम निकल गया, उसके बाद एक और साल लगेगा कि भैया चलिए आप फ्रंट पे जाइए थोड़ा टाइम सर्विस करिए, और देखते ही देखते आपके चार साल पूरे होने जाएंगे, तीन साल तो कहीं नहीं गए, तो बाय द टाइम उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा सा स्किल आएगा, उनका टेन्योर का टाइम ओवर और आर्मी को बोलना पड़ेगा, चलिए हमने आपके ऊपर इतना सारा पैसा लगाया, हमने आपके ऊपर इतना सारा टाइम लगाया, अब 75% आउट, 25% ही रह जाएंगे। इनमें से जो 25% रह जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और ये हो गया आपका मैसिव ड्रेन। तो जिन्होंने ये स्कीम बनाई थी उनको ये समझ में नहीं आया था कि सिर्फ देशभक्ति, जोश और जज्बे से एक सोल्जर का काम नहीं चलता है, उसको प्रोफेशनल स्किल्स भी चाहिए होते हैं। और ये जो टैंक ऑपरेटर, गनर, सिग्नल मैन, रेडार ऑपरेटर, ये जो मैकेनिक होते हैं, किसी भी वेटरन से बात कर लीजिए, किसी भी बंदे से बात कर लीजिए जिसने फौज में टाइम बताया, वो बताएगा कि अरे 8-10 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं ये वाले स्किल्स लेने के लिए, क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आर्मी के यूज में कौन आया इन अग्निवीर्स में से, ये सोचने वाली बात है, जबकि लाखों लाखों रुपए लग जाएंगे इनको ट्रेन करने के लिए। दूसरी तरफ आर्मी को ड्रेन किया जा रहा है, आर्मी को मॉडर्नाइज होने की जरूरत है, आर्मी के पास ज्यादा पैसे जाने की जरूरत है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे खींच रहे हैं। ऑलरेडी पैंडेमिक से पहले, मैंने हमारी तो एक टाइम पे 2.8% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी बिगिनिंग ऑफ द लास्ट डेकेड डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो गिर के 2.1% तक आ गई थी। वो तो फिर गालवान के बाद सरकार ने कहा कि अच्छा चलो अब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी धीरे धीरे भी बढ़ाएंगे, हमारी ओवरऑल डिफेंस मोनेटाइजेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब आते हैं एक बड़े मुद्दे पर जिसके वजह से अग्निवीर, अग्निपथ किया जा रहा है, क्यों, पेंशन के लिए पैसे नहीं है। तो इसके बारे में सरकार ने बहुत बार बताया कि देखिए इतना बड़ा डिफेंस बजट, इतना बड़ा पेंशन बजट, इसको कम करने की जरूरत है, और इसी के वजह से हम ये टूर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं जिससे पेंशन का बर्डन कम हो। लेकिन जो सरकार आपको बताती नहीं है वो ये है कि एक्सपेंडिचर तो एक और जगह हो रहा है, ग्रुप ए सर्विसेज एंड सिविलियन डिफेंस इंप्लॉयज, माने वो लोग जो कभी सरहद पर तो नहीं जाएंगे लेकिन डिफेंस का सारा माल खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, माने नाम के तो ये डिफेंस फोर्सेस में ही आते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, फास्टर प्रमोशन भी मिलता है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन अलाउंस भी मिलता है, इसके साथ साथ 60 इयर्स ऑफ सर्विस भी करते हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली खर्चा बहुत ज्यादा आता है, 45% ऑफ डिफेंस पेंशन जाता है सिविलियन डिफेंस इंप्लॉयज को, लेकिन इन पर आंच नहीं आनी चाहिए। 7 लाख के आसपास सर्विंग सिविलियन डिफेंस इंप्लॉयज हैं, 5 गुना ज्यादा महंगे होते हैं वर्सेस यूनिफॉर्म्ड काउंटर पार्ट इनके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। सोचने वाली बात है, पेंशन इश्यूज कभी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास के बारे में तो नहीं सुना, उनके ऊपर तो मल्टीपल पेंशन है, 2 बार एमपी बनो तो 2 बार पेंशन मिल जाता है, वहां तो कोई हाहाकार नहीं सुनने में आया है। देखिए अग्निपथ स्कीम के पीछे मंशा जो भी हो, एक डेंजर साइन पहले ही दिखने लगती है जब ये फैसला झटके से लिया जाता है। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट सीधा आ जाता है और यह दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ना किसी की मर्जी यहां चली है, रा विजडम चला है। अरे मेरी बात मत सुनिए, अरे मेजर जनरल जीडी बख्शी की तो बात सुनेंगे, रात को 9 बजे टेलीविजन पर उनकी बात सुनते हैं इतने सालों से। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा दैट भैया ही वॉज फ्लैबरगास्टेड बाय दिस स्कीम, एंड आई कोट हिम, दिखाओ एडिटर ट्वीट, आई थॉट इनिशियली इट वॉज अ ट्रायल बीइंग डन ऑन अ पायलट बेसिस बट दिस इज एन अक्रॉस द बोर्ड चेंज टू कन्वर्ट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इनटू अ शॉर्ट टेन्योर क्वासी कॉन्स्क्रिप्ट फोर्स लाइक द चाइनीज। अब इसके ऊपर भी सरकार ने पहले और सरकारी स्पोक्सपर्सन ने झूठ बोलने की कोशिश की, कहा कि नहीं नहीं ये तो एक छोटा सा अंग है जो इस तरीके से जाएगा, नॉर्मल रिक्रूटमेंट कैरी ऑन होते रहेगी, जैसा नहीं है यही सोल मीडियम ऑफ रिक्रूटमेंट बन जाएगा। तो जैसा कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के साथ हुआ था, जिस तरीके से, जिस झटके से आप यह फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो और रेडिकली आर्मी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, उसका फ्यूचर एक ही है। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि देखिए कुछ अगर ट्वीक्स की जरूरत होगी, कुछ चेंज की जरूरत होगी तो हम 4-5 साल में देख लेंगे। ये चेंज क्या होने वाला है? ये चेंज वही होने वाला है जो आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल हॉस्पिटल एम्प्लॉयज के साथ देखते हो कि 4-5 साल बाद वो बोलेंगे कि हमारा टेन्योर परमानेंट करो। इसी तरीके के एजिटेशन जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखे, ये फिर से आप सेटअप कर रहे हो कि बाद में जाकर यही अग्निवीर सोल्जर्स बाद में एजिटेट करेंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद आपने पैसा कितना बचाया, इसका जवाब हमारे पास है नहीं, क्योंकि बोला तो गया था कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं थे तो आर्मी पर थ्रो किया गया, आर्मी ने बजट बचाने के लिए, पेंशन बचाने के लिए किया, लेकिन अल्टीमेटली कितना पैसा बच रहा है इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है, इसमें बाय द वे कोई डाउट नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस का बहुत ज्यादा बर्डन है, पेंशन पेमेंट्स को लेकर कोई सोल्यूशन की जरूरत है, लेकिन क्या अग्निपथ स्कीम सही है या नहीं? राजनाथ सिंह तो यह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो इसको ऐसे देख ही नहीं रही है, सेविंग्स तो व्यू पॉइंट है ही नहीं, जबकि फंडामेंटल पॉइंट वही था, वो तो कह रहे हैं हम और पैसा लगाने को तैयार है, तो फिर ये स्कीम बनाया क्यों गया था? और वैसे देशभक्त पर तो हम बहुत क्लियर हैं, अगर पैसा काटना ही है, अगर पेंशन काटना ही है, तो एमपी और एमएलए के काटो ना, उनको कोई टेंशन नहीं होगी, उनके बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर 7, ये 4 साल का माजरा क्या है? हाँ, 5वें साल पे ग्रेच्युटी लग जाएगी, इसीलिए ये बहुत ही कम टाइम फ्रेम होता है 4 साल के लिए कि आप किसी को ट्रेन करो, मोटिवेट करो, और उसका फायदा भी आर्मी को उसके बाद मिलेगा, क्योंकि 2-3 साल तो कहीं नहीं गए आपके ट्रेनिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन में। और उसके साथ साथ सोचिए, 4 साल का छोटा एक टाइम फ्रेम है जिसमें आदमी काम कर रहा है और यह सोच रहा है कि मेरी उल्टी घड़ी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और 4 साल में 6 महीने की आप ट्रेनिंग भी लगाओगे, उसके बाद आप लीव्स भी लगाओगे, तो अल्टीमेटली फोर्सेस को कितना उससे बेनिफिट होता है, ये थोड़ा सा मैथ्स देखने की भी जरूरत है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये तो डेफिनेटली कह रहे हैं कि 4 साल का पीरियड तो उसको रीथिंक करने की जरूरत है, और शायद हो भी सकता है ये रीथिंक टू मेक इट मोर वैल्यूएबल एंड वर्थवाइल, कि भैया जब आर्मी भी इतना पैसा लगा रही है तो उसका रिटर्न भी होना चाहिए। और उल्टे हाथ तो अब इंफॉर्मेशन तो माने अब तो ये सामने है एविडेंस कि सीडीएस बिपिन रावत चाहते थे कि जो हमारे जनरल्स हैं वो और लंबा टेन्योर सर्व करें। तो जब एक तरफ हमारे जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लंबे टाइम तक सर्व कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते, क्या 40 साल का इंसान क्या जंग नहीं लड़ सकता है, या 50 साल का लीडर नहीं बन सकता है, यहां तो 60 ईयर ओल्ड लोग जनरल बने बैठे हुए हैं, और उधर हमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, इससे आर्मी यंग हो जाएगी, जैसे कि आज के डेट में, टेक्नोलॉजिकल डेट में 40 साल या 20 साल में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, जबकि बैटलफील्ड अब रिमोटली फाइट होगा, हाथ से जंग तो होने वाली नहीं है। फाइनल एक पॉइंट है, बहुत पेचीदा पॉइंट है, ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट की बात चल रही है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट अग्निपथ में होगा, ये पूरे देश से होगा, सारे क्लासेस से होगा, तो ये जो अग्निवीर की जो रेजिमेंट्स होंगी वो पुराने टाइप ऑफ रेजिमेंट्स नहीं होंगी, जैसे कि गुरखा रेजिमेंट, तो उनका क्या होगा? एक तरफ ये भी मंशा जताई गई थी कि भाई ये अब इसको खत्म होने का टाइम आ चुका है, ये 150 साल पुरानी प्रथा है, ये अंग्रेजों की प्रथा है, लेकिन अगर आप किसी भी आर्म फोर्सेस पर्सनल से बात करेंगे, मिलिट्री पर्सन से बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि कितना जरूरी होता है ये एक कोहेसिव रेजिमेंट, जहां एक दूसरे के लिए आदमी मर मिटने को तैयार होता है, और वॉर में ये एक, आप इसको ट्राइबल रेजिमेंटल फ्रीमेसनरी बोल लीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है एक युद्ध के एटमॉस्फेयर में। एनएसए दोवाल ने बाय द वे ये क्लियर किया है एज ऑफ नाउ कि ऐसे रेजिमेंट को तो कोई छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब सारे अग्निवीर ऐसे ही आते रहेंगे तो अल्टीमेटली इस पर भी सवाल उठता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस हैं, मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप मिल बांट कर काम करोगे तभी आपको ये वाले सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक सॉल्यूशन डेफिनेटली है कि आर्मी की ओवरऑल साइज हमें काटने की जरूरत है, 2-3 लाख सोल्जर्स को आप वीआरएस दो, जबरदस्ती मत निकालो, उनको वीआरएस दो, अच्छा पैकेज दो, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं वो करें। चाइना ने भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2015 में ऐसा काम किया था, क्योंकि अब आर्मीज और मॉडर्नाइज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन के साथ जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है वो कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी पर रिलायंस और बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल साइज कम करने की जरूरत है, इंटेक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कि एक कलर स्कीम लाइए और आप देखिए कि भाई कुछ लोगों के लिए 20 साल है, कुछ लोगों को उसके बाद आप रिटायर करिए, जिससे कि वो ट्रेनिंग भी करे, वो सर्व भी करे और उसके बाद वो रिटायर कर सके, और कुछ लोगों को जो बहुत ही प्रोफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे हैं, उनको आप आगे जाने दीजिए। लेकिन ये ग्रेजुअल रिटायरमेंट की जो पॉलिसी भी होगी वो तभी काम करेगी जब एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा विद इन द मिलिट्री, विद इन द आर्मी, जो एक्चुअली इनको सही काम दिलवा पाए। अभी तो बहुत लोग ट्वीट करके बोल रहे हैं कि हम आप लेने के लिए तैयार हैं और हम हायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसी रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एक्चुअली काम करेगी, आज के तरह फेलियर वाली नहीं, तब आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इससे मूव आउट करके सिविलियन सेक्टर पे भी आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आ सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा और लोगों को साथ लेने की जरूरत है, लेकिन अभी तो आपने झटके से इसको अनाउंस कर दिया है और झटके से आप इसको इन्फोर्स भी कर रही है। चलिए इन्फोर्स करिए, उसके बाद जीएसटी जैसा हालत होगा 4 साल बाद भी हम इसको टिंकर अराउंड करेंगे, इस पे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।